व्याख्या। चलियो सुदक्षिण देवगिरी, जहाँ शशिवृत्त कुमार विपन मध्य क्रीड़ा करती, समह बाल चित चार। संदर्भ: प्रस्तुत पद्य खंड चंद्र बरदाई कृत पृथ्वीराज रासो के शशिवृता विवाह खंड से उद्धृत किया गया है। प्रसंग: शशिवृता का विवाह कन्नौजेश्वर जयचंद के भाई वीरचंद के साथ होने जा रहा है। यह समाचार पाकर गंधर्व ने शशिव्रता के पास पहुंचने और उसके मन में पृथ्वीराज के प्रति पूर्व राग जमाने जगाने की प्रक्रिया का वर्णन करते हुए कवि कह रहा है। व्याख्या: वह गंधर्व सब सुनने के बाद दक्षिण दिशा में स्थित उस देवास की ओर चल दिया जहां राजकुमारी शशिव्रता निवास करती थी। उसने वहां पहुंचकर देखा कि राजकुमारी दर्शक के चित्त को चुरा लेने या आकर्षित कर लेने में समर्थ सहेलियों के साथ राज उद्यान में विहार और क्रीड़ा कर रही हैं। विशेष वर्णनात्मकता प्रमुख है। राजकुमारी और उसकी सखियों के व्यक्तित्व स्थापना का प्रयत्न भी उल्लेख्य है। दूहा छंद है। कवित्व: कहें बाल सुनिहंस कवन हम पुब्ब जम्म कह, कवन पत्ति हम लहें लेश विचार लहो इह, तबय हंस उच्चर्यो सुनहि शशिवृत्ता नारी चित्र रेख अपछरि सगीन अतिरूप धरारी, तेहि गर्भ इंद्र सम कलह करे क्रोध देव बंडेसुरम, दक्षिण नरेश निपतान बंध पुंज ग्रह अवतार तुम। प्रसंग: राजकुमार शशिव्रता के मुख से अपने पूर्वजन्म की बात जानने की जिज्ञासा सुनकर हंस वेशधारी गंधर्व उसे पूर्वजन्म की बात बताते हुए कहने लगा। व्याख्या: हंस के रूप में उस गंधर्व का परिचय पाने के बाद राजकुमार शशिव्रता ने उससे पूछा, हे हंस तनधारी, मुझे बताओ कि पूर्वजन्म में मैं क्या थी और इस जन्म में मुझे पति के रूप में कौन सा पुरुष प्राप्त होगा। मेरे भाग्य का लेखा जोखा पूर्णतया देख विचार कर मुझे यह सब ठीक प्रकार से बता दो। शशिव्रता की जिज्ञासा को जान लेने के बाद उस हंस तंधारी गंधर्व ने कहा, हे राजकुमारी शशिव्रता, सब कुछ ध्यानपूर्वक सुनो। अपने पूर्व जन्म में तुम चित्ररेखा नामक सुंदर अप्सरा थी। अपनी अन्य सखी अप्सराओं में तुम्हें सबसे अत्यधिक बढ़कर रूप सौंदर्य प्राप्त था। सौंदर्याधिक्य के इसी गर्व के कारण तुम्हें देवराज इंद्र से झगड़ा मोल लिया। इस पर क्रोधावेश में देवराज इंद्र ने तुम्हें शाप तो दिया, पर वह शाप भी बड़ा सुंदर और मनोरम था। उन्होंने यह शाप दिया कि अब धरती पर दक्षिण दिशा में स्थित देवास के राजा यदुवंशी भान के भाई पुंज के घर में तुम्हारा जन्म होगा। उसी के परिणाम स्वरूप आज तुम यहाँ इस रूप में हो। विशेष पृथ्वीराज रासो के कुछ रूपांतरकारों में शाप की बात अन्य प्रकार से बताई गई है। वह यह कि एक बार भगवान शिव अप्सराओं का नृत्य देखने की इच्छा से इंद्र के दरबार में पहुंचे। अप्सराएं देवराज की आज्ञा से उपस्थित हुईं। प्रमुख अप्सरा चित्ररेखा ने दरबार में पहुंच परंपरा के अनुसार देवराज इंद्र का ही अभिवादन किया। अतिथि महादेव शिव का नहीं। इससे चिढ़कर शिव ने चित्ररेखा को देवलोक से भ्रष्ट होकर मर्तलोक में जन्म लेने का शाप दे डाला। इससे खिन्न रंभा आदि अप्सराओं ने शिव का अभिनंदन कर उन्हें प्रसन्न कर चित्ररेखा के लिए क्षमा याचना की। परिणामतः शिवजी ने शाप में संशोधन करते हुए कहा कि इसका जन्म तो मर्तलोक में होगा ही, पर वह राजकुमारी के रूप में होगा और इसे पति रूप में महाबली पृथ्वीराज चौहान जैसा व्यक्ति प्राप्त होगा। जबकि यहाँ इंद्र के शाप की बात कही गई है। ध्यातव्य है कि दोनों रूपों में यह बात कपोल कल्पित नहीं एवं कवि समय या उक्ति का निर्वाह मात्र ही है। पद्य में सुरम अर्थात सुंदर शाप देने की बात कहकर चित्ररेखा के मानवीय रूप में जन्म लेने को एक प्रकार का सौभाग्य बना दिया गया है। देव रूप मात्र गंधजीवी होता है, जबकि मानव रूप में प्रत्येक प्रकार के जीवंत भोग की सुविधा प्राप्त है। इस कारण चित्ररेखा का शाप भी एक प्रकार से वरदान ही है। चौपाई: कहे हंस सुनि बाल विचारी, पंग बधुर बीर सुपुतारी, देह तु दई मातु पितु बंध, सूतम जोग नहीं बरकंध, त्यौ रह वर वरख इकमही, है गय अनत जुझिह है समतही, तिह चार करी तुमही आयो, करि करुणाय इंद्र पठायो। तब उच्चर्य बाल समतेह, तुम माता समपिता सनेह, मुझय सहाय वरी कब करिहौं, पाणि ग्रहण तुम चित्त अनुहरिहौं। प्रसंग। शशिव्रता के पूर्व जन्म की कथा बताने के बाद हंस स्तनधारी गंधर्व ने उसे बताया कि अब तुम्हारे माता पिता तुम्हारा विवाह अन्यत्र कन्नौजेश्वर के भाई वीरचंद के साथ करना चाहते हैं, जो कि तुम्हारे योग्य नहीं है। इस प्रसंग और राजकुमारी शशिव्रता के प्रतिक्रिया का वर्णन करते हुए चंद्रवरदाई कह रहे हैं। व्याख्या। हंस स्तनधारी गंधर्व राजकुमारी शशिव्रता से आगे फिर कहने लगा, हे राजकुमारी, सुनो और विचार कर देखो। पंगुराय जयचंद्र का एक वीरचंद नामक भाई है। तुम्हारे माता पिता ने उसी के साथ तुम्हारा गठबंधन विवाह करने के लिए तुम्हारी सगाई उसके साथ आयोजित कर दी है। लेकिन हे श्रेष्ठ स्पंध वाले राजकुमारी, वह वीरचंद किसी भी प्रकार से तुम्हारे योग्य नहीं है। पर उसी के कारण अब एक ही वर्ष के भीतर ही कुछ ऐसी बन जाएगी कि तुम्हारे पाणि ग्रहण को लेकर उस अवसर पर अनेकों घोड़े हाथी और सामंतगण परस्पर जूझ कर मारे जाएंगे। यह सब सोचकर मैं तुम्हारे पास आया हूँ। देवराज इंद्र ने तुम पर अत्यधिक करुणा करके मुझे यहाँ भेजा है। यह सब सुनकर मन ही मन विचार कर तब राजकुमार शशिव्रता ने हंस स्तनधारी गंधर्व से कहा कि अब केवल तुम ही यहाँ पर मेरे माता पिता के समान बंधु, स्नेही और हित चिंतक हो। तुम्हें छोड़कर अन्य कोई भला मेरी सहायता कैसे और क्यों कर सकता है। तुमसे ही मुझ पर यह आशा है कि तुम ऐसी व्यवस्था करवाओगे जिससे मेरा विवाह मेरे योग्य और मनोकूल व्यक्ति से संपन्न हो सके। भाव यह है कि मेरे योग्य वर पुरुष की खोज में केवल तुम ही मेरी सहायता कर सकते हो। विशेष। हंस स्तनधारी गंधर्व द्वारा कन्नौजेश्वर के भाई वीरचंद को शशिव्रता का योग्य ठहराना वस्तु संगठनों की दृष्टि से विशेष द्रष्टव्य है। ऐसा कहकर वह शशिव्रता का ध्यान दूसरी ओर पृथ्वीराज चौहान की ओर आकर्षित करके दो राजकुलों में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न कर रहा है कि जो कि आगे चलकर वस्तुतः युद्ध के रूप में प्रकट होता है, वह भी शशिव्रता को लेकर। तब बोल्यो दुजराज विचारम, सुनि शशिवृत्त कथ इक सारम, दिल्ली वय चहुआन महाभर, सो तुम जो चिंतयो हम्बर, सत सामंत सूर बलकारी, तिन समयुद्ध सुदेव विचारी, जिन गह्यो सरवर गज्जन भय, हय गय मंडी छंडी पुनि ही वय। प्रसंग। राजकुमार शशिव्रता ने जब हंस स्तनधारी गंधर्व से उसकी सहायता करने अपने योग्य वर बताने की बात कही, तब उसके मन में पृथ्वीराज चौहान के प्रति पूर्व राग जगाकर शशिव्रता की इच्छा से पृथ्वीराज के मन में भी पूर्व राग जगाने के लिए हंस दिल्ली की ओर उड़ चला। इस प्रसंग का वर्णन करते हुए प्रस्तुत चौपाइयों में कवि चंद्रवरदाई कह रहे हैं। व्याख्या। तब पक्षियों के राजा हंस स्तनधारी उस गंधर्व ने सोचने विचारने का क्रम या अभिनय करते हुए कहा, हे राजकुमारी शशिव्रता, मुझसे तत्व की एक बात सुनो, मैं बताता हूँ। हमने सोच विचार कर देखा है कि दिल्ली नरेश पृथ्वीराज चौहान बहुत बलवान योद्धा हैं, वही तुम्हारे योग्य वर हो सकता है। उसके पास अत्यंत शूरवीर बलवान सैकड़ों सामंत हैं, जिन्हें युद्ध में तो देवताओं के समान पराक्रमी और अपराजेय ही समझो। उन सामंतों ने अपने बाणों के बल से गजनी के सुल्तान मोहम्मद गोरी को भी आगे बढ़कर उसका विरोध कर पकड़ लिया था। उन्हीं शत्रुओं से छीने हाथी घोड़ों से अपने महाराज पृथ्वीराज को मंडित कर दिया और शत्रुओं के हृदय तक खिला दिए, अर्थात छक्के छुड़ा दिए। विशेष। अंतिम पद में उपमा अनुप्रास और यमक अलंकार। कवि ने पृथ्वीराज और उसके सामंतों के बल वैभव का अत्यधिक सजीव चित्रण किया है। चौपाई छंद है। द्विजराज शब्द द्विजराज का अपभ्रंशित स्वरूप है। द्विज के कई अर्थ होते हैं, ब्राह्मण, दांत, चंद्रमा और पक्षी। यहाँ कवि ने द्विज या द्विज का प्रयोग पक्षी के ही अर्थ में किया है, अतः द्विजराज का अर्थ हुआ पक्षीराज हंस। बपन मध्य अच्चिज इह दिखिराज पृथ्वीराज, दुत दूत कलधौतन हंस स्वरूप विराज, संज संपत्तो निपति पय दूत सुजत्तो राय, बर कगद नृप हथ दय, कही श्रोतान बधाय। राका अर सूरज बिन उदे मस्त दुहबेर, बर शशिवृता शोभई मनो श्रृंगार सुमेर। प्रसंग। हंसदूत पृथ्वीराज के लिए एक आश्चर्य था। हंस से प्रेम संदेश पाकर राजा के मन में राजकुमार शशिव्रता के प्रति श्रुत्यानुराग भाव उत्पन्न हो गया। इन सब का प्रामाणिक वर्णन करते हुए कविवर चंद्र वरदाई कहते हैं। व्याख्या। चौहान नरेश पृथ्वीराज ने मन में ही स्वर्णिम हंस के रूप में एक आश्चर्य से साक्षात्कार किया। उन्होंने देखा कि स्वर्णिमता वाला एक सुंदर हंस पक्षी वहां शोभायान हो रहा है। इसके बाद सायंकाल होने पर देवास के यदुवंशी नरेश का भेजा हुआ राजदूत महाराज पृथ्वीराज के पास आ पहुंचा। उसने आते ही महाराज के हाथों में एक सुंदर सुशोभित पत्र अर्पित किया और फिर राजकुमारी शशिव्रता के रूप सौंदर्य का वर्णन करके उसमें भी पृथ्वीराज के मन में राजकुमारी के प्रति श्रुतिजन्य अनुराग का भाव जगा दिया, अर्थात उसे और प्रवर्धित कर दिया। राजकुमारी के सौंदर्य की प्रशंसा करते हुए वह दूत कहने लगा, इस पृथ्वी के जितने अंश पर क्रम से सूर्य और चांद उदय अस्त होकर प्रकाश फैलाते हैं, उतने ही भाग पर श्रृंगार से सजी धजी राजकुमारी शशिव्रता सुमेर पर्वत के समान सुशोभित होती है, अर्थात राजकुमारी का स्वर्णिम सौंदर्य समस्त विश्व में सुशोभित है। वह सबसे बढ़कर अनुपम सुंदरी है। विशेष। कवि ने सूर्य और चंद्रमा में स्थित सुमेरी पर्वत के सौंदर्य प्रकाश से भी बढ़कर राजकुमारी शशिव्रता के रूप सौंदर्य को बताया है। ऐसा प्रकट करने वाले दसवें दोहे में उत्प्रेक्षा अलंकार है। अन्य अनुप्रास सभी पद्यों में स्पष्ट है। श्रुतिजन्य अनुराग भाव श्रृंगार प्रेम के अनेक स्वरूपों में से एक है जहाँ इसका वर्णन किया गया है। त्रोटक। जल सहस मध्य समाम भय रविबाल बहिक्रम अथमियम, बरसै सौ जो बन संधि अति सुमिले जनु पित्तह बाल जति, जुरहि लगि सैसव जुब्बनता सुमनो ससिरम तन राजहिता, जु चले मुरी मारुत झंकुरिता सुमनो मुरवैस मुरी मुरिता। प्रसंग। शैशवकाल की समाप्ति और राजकुमार शशिव्रता के यौवन में प्रवेश का वर्णन करते हुए दूत कह रहा है। व्याख्या। त्रोटक छंद का आश्रय लेकर मैं अब सुंदरी बाला शशिव्रता की वय संधि काल का प्रामाणिक वर्णन करता हूँ। पानी में उठने वाले बुलबुलों के समान देखते ही देखते उसका बचपन विलुप्त हो गया और अब उसे भय लज्जा के समान भय से मुग्धा नायिका की अवस्था में प्रवेश कर लिया। जिस प्रकार अक्ताप बाल सूर्य अर्थात प्रातःकालीन सूर्य उदित होकर कुछ क्षणों तक थोड़ी देर तक अपनी लालिमा बनाए रखता है, फिर वह लालिमा भी क्रमशः विलुप्त हो जाती है, उसके बाद सूर्य की प्रखरता और ओजस्विता बढ़ने लगती है, उसी प्रकार राजकुमारी शशिव्रता के तन पर से शैशवी लालिमा समाप्त होकर अब प्रखर यौवन रूपी सूर्य का उत्ताप ओजस्विता बढ़ाने लगा है, अर्थात अब राजकुमारी शशिव्रता ने पूर्णतया यौवन के लावण्यमय क्षेत्र में प्रवेश पा लिया है। शशिव्रता के अंग प्रत्यंग में शैशव का यौवन के साथ मिलन कुछ इस प्रकार से हो रहा है कि मानो वह यौवन कोई क्षिप्त बाल योगी हो, अर्थात बालयती के समान ही राजकुमारी शशिव्रता का प्रत्येक अंग यौवनोत्साह से यदीप्यमान हो उठा है, यौवन के तेज और उन्माद से भर उठा है। राजकुमारी शशिव्रता के मन में शैशव तो मानो शिशिर ऋतु के समान था, पर अब उसके स्थान पर वासंती सुषमा को आकर्षित करने वाला, उसे भी मात दे देने वाला यौवन का राज्य उदय एवं विकसित हो रहा है। राजकुमार शशिव्रता के तन रूपी लतिका को यौवन की काम वासना को उद्दीप्त करने वाली वायु मानो झकझोरने लगी है, अर्थात उसका सुविकसित अंग प्रत्यंग कामाग्नि को भड़काने वाला है। जैसे मधुमस्त भ्रमर के उड़ने से उसके पंख एक अलक्षित सी एक अश्रव्य सी मधुर ध्वनि उत्पन्न करते हैं, उसी प्रकार यौवन के मध्य में माती सुंदरी शशिव्रता के होंठ भी मस्ती भरे गीत की कड़ियाँ गुनगुनाते रहते हैं। इस प्रकार कवि चंद्र वरदाई उसके रूप यौवन का काव्यमय वर्णन करता है। विशेष। समूचे पद में उत्प्रेक्षा अलंकार प्रमुख है। रूपक की योजना भी कहीं कहीं हुई है, अतः रूप को उत्प्रेक्षा अलंकार कहना अधिक उपयुक्त है। अनुप्रास अलंकार भी है। यौवनोद्भव काल की गुनगुनाना आदि क्रियाओं का कवि ने स्वाभाविक वर्णन किया है। मुग्धा नायिकाओं का एक प्रकार है। मुग्धा उस नायिका को कहा जाता है जो कि यौवन की अनुभूतियों से अपरिचित अपने अंग विकास को परिलक्षित करती हुई कुछ भीत सी लज्जामान सी रहा करती है। यहाँ कवि ने सचिव्रता का वर्णन वस्तुतः एक मुग्धा नायिका के लक्षणों से समन्वित ही किया है। कवित्त पत्त पुरातन झरिग पत्त अंकुरिय उठतुच ज्यों सेव सेव उत्तरिय चढ़िय वैसव किशोर कुछ शीतल मंद सुगंध आये ऋतिराज ये चानम रोमराय अंग कुछ नितम तुच्छ सरसान पढ़य न शीत कटि छीन हुए लज्ज मान ढकंति फिरे ढकय न पत्तय ढंकय कहे मन बसंत मंत जू करे। प्रसंग बसंत ऋतु के माध्यम से राजकुमार शशिव्रता का मुग्धा नायिका या अज्ञात यमुना नायिका के रूप में वर्णन करते हुए पृथ्वीराज से कह रहा है। व्याख्या जैसे बसंत ऋतु का आगमन होते ही वृक्षों के पुराने और दुर्बल हो गए पत्ते झड़ जाते हैं, फिर उनके स्थान पर नन्ही नन्ही कोपलों के रूप में नए नए पत्ते अंकुरित होने लगते हैं, उसी तरह राजकुमारी शशिव्रता का बचपन बीत जाने पर अब यौवन बसंत उसके तन मन पर जाकर उसे नए रूप से अंकुरित करने लगा। जैसे अचानक ही ऋतुराज बसंत के आगमन से शीतल मंद सुगंधित वायु स्वतः ही चलकर प्रत्येक वस्तु को सरस मधुर बनाने लगती है, उसी प्रकार यौवन बसंत के आगमन से इच्छा आकांक्षाओं और उच्छ्वास राजकुमारी शशिव्रता की रोमावली स्तनों और नितंबों को भी सरसा कर उन्हें विकसित करने या उभारने लगे। बसंत आगमन के साथ जैसे शीत में हो रही वृद्धि घटने लगती है, उसी प्रकार यौवनोद्भव के कारण राजकुमारी शशिव्रता की कमर भी अधिकाधिक पतली एवं लचकीली होने लगी है। जैसे लाजवंती का पौधा उंगली दिखाने या मात्र छू देने से सिकुड़ने लगता है, उसी प्रकार अब शशिव्रता भी तनिक तनिक सी बात में संकुचित या यौनोद्भुत या यौनोद्भुतता लज्जा का अनुभव करने लगी हैं। जैसे बसंत आगमन पर पलाश के पेड़ अपने तन को पत्तों से ढक कर नहीं रख पाते, उसी प्रकार यौवन के आगमन के कारण शशिव्रता भी अपने अंगों के उभार को चाहकर भी रोक या ढक कर नहीं रख पाती, अर्थात उसका आंचल ढुलक ढुलक जाता है और इस प्रकार उसके उभरे अंग सौष्ठव को स्वतः ही अनजाने भाव से प्रकट कर जाता है। इस तरह जैसे बसंत आगमन पर वन उद्योगों की स्थिति हो जाया करती है, उसी प्रकार यौवनागम पर राजकुमार शशिव्रता के तन मन की स्थिति भी हो गई है, अर्थात सभी कुछ सरस रोमानी एवं उभार से पूर्ण होकर आकर्षक लगने लगता है। विशेष बसंत के वैभव का वर्णन भी उतना ही सुहावना एवं आकर्षक किया गया है जितना कि उसके माध्यम से राजकुमारी शशिव्रता के अंग सौष्ठव का। समूचे पद में उपमा अलंकार का सफल प्रयोग किया गया है। अंतिम पंक्ति में यमक और अनुप्रास की योजना भी दर्शनीय है। जैसे बसंत के आगमन से शीत कम होने लगता है, वैसे ही यौवन के आने से शशिव्रता की कटी क्षीण होने लगती है। परंपरागत उपमा देते हुए भी ताजी लगने वाली भव्य नव्य एवं आकर्षक है। वर्णन रस के अनुकूल भाषा छंद की योजना ही विशेष ध्यातव्य है। चित्र रेख बाला विचित्र चंद्र चंद्रानन स्वर्ग मग उत्तरी चित्र पुत्तरी परमानन कामवान संजुरी बाल अंजुरी सुलक्षिय मार कलह उत्तरी उब अक्षरी सुलक्षिय संग्रह वृत्त चहुआन कौ गंवरी पूज्य दिन प्रतिकय। प्रसंग राजकुमार शशिव्रता के सौंदर्य पृथ्वीराज चौहान को पति के रूप में पाने के लिए किए जाने वाले व्रत और गरीब पूजा आदि का वर्णन करते हुए कवि कह रहा है। चित्ररेखा नामक अप्सरा के रूप वाली या चित्र की रेखाओं के समान सुंदरी उस विचित्र बाला शशिव्रता का सौंदर्य अद्भुत है। उस चंद्रमुखी की मुख्य कांति चांदनी के समान ही सर्वत्र परिव्याप्त होने वाली है। वस्तुतः वह चित्ररेखा नामक अप्सरा का ही पूर्ण अवतार है। चित्र की पुतली के समान अद्भुत सौंदर्य वाली बाला शशिव्रता स्वर्ग के मार्ग से उतरकर इस धरती को अपनी सुंदरता से सुंदर बनाने के लिए आई है। वह काम के सुसाधित बाण के समान ही गढ़ जाने वाली अनुपम सुंदरी है। वह सभी अच्छे लक्षणों से संयमित है। पूर्व जन्म में अत्यधिक सुंदर लक्षणों से संयुक्त यह रूपसी अप्सरा इस धरती पर कामदेव की समस्त कलाओं का एकाकार होकर अवतरित हुई है। अपने 3200 उच्च लक्षणों के कारण वह सहज स्वाभाविक रूप से साक्षात लक्ष्मी का रूप एवं अवतार ही प्रतीत होती है। अपने भावी पति से संबंधित प्रीति भाव को वह प्रत्येक क्षण अपने हृदय में अंतः संयोजित किए रहा करती है। वह चौहान नरेश के वृत्तांत का हमेशा संग्रह करती है, अर्थात प्रत्येक जानकारी प्राप्त करती रहती है, या यह अर्थ भी संभव है कि चौहान नरेश पृथ्वीराज को पति रूप में प्राप्त करने के लिए वह कठोर व्रत का पालन कर रही है। अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए ही वह प्रतिदिन गौरी पार्वती की पूजा आराधना नियम पूर्वक करती है। विशेष इच्छित पति पाने के लिए भारतीय नारियों द्वारा गौरी पूजन की परंपरा अत्यंत प्राचीन है। सीता ने भी राम की प्राप्ति के लिए गौरी पूजा की थी। यहाँ शशिप्रता भी वैसे ही करती दिखाई गई है। पद्य में रूपक उपमा और अनुप्रास अलंकार हैं। सौंदर्य वर्णन के लिए कवि ने परंपरागत उपमानों को ही अपनाया है। हुआ प्रसन्न शिव शिवा बोलही हूँ पठय तुझ प्रति इह बरनी तुम जोग चंद जोसना वान वृत्त जो रुक्मिणि हरि देव प्रीति अति बढ़य प्रेम भर इह गुण हंस स्वरूप नाम दुजराज भनिय चर बुल्लिय सुपिता कमधज्ज नर ब्याहन पठयो सुगुरु दुज आवय सुभ्रात जय चंद सुत कमध पुंज ब्याहन सुकज। प्रसंग शशिव्रता के पिता ने उसका विवाह कन्नौजेश्वर जयचंद के भाई वीरचंद्र से राजपुरोहित भेज कर निश्चित कर दिया है, जबकि वह मन से महाराज पृथ्वीराज के प्रति समर्पित है। पृथ्वीराज के मन में शशिव्रता को यथाशीघ्र अपनाने की प्रेरणा भरने के लिए हंस दूत इस समस्त प्रसंग का संक्षेप में वर्णन करते हुए कह रहा है। जब राजकुमारी शशिव्रता की सेवा भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने पार्वती के माध्यम से उसे पृथ्वीराज के रूप में मनवांछित वर या पति प्राप्त होने का वरदान दे दिया, तब राजकुमारी ने मुझे बुलवाकर आपके पास भेजा है। ये महाराज पृथ्वीराज अपनी सौंदर्य शोभा से में चंद्रमा के ज्योत्सना के समान व वरेण्य राजकुमारी शशिव्रता वसुता आप ही के योग्य है। जैसे रुक्मणी और भगवान कृष्ण में अदेखा एवं श्रुतिजन्य अनुराग था, उसी प्रकार तुम दोनों का प्रेम भी है। एक दूसरे को उस प्रेम भाव को स्वीकार कर लेने पर वह और भी अधिक वृद्धि प्राप्त करेगा। पक्षीराज हंस के रूप में आए उस दूत ने राजकुमार शशिव्रता के समस्त गुण और इच्छाएं महाराज पृथ्वीराज के समक्ष वर्णित की। जब शशिव्रता के माता पिता क्या कर रहे हैं इस बात की सूचना चौहान नरेश को देते हुए उस हंस दूत ने फिर कहा, अब राजकुमार शशिव्रता के पिता ने अपने राजपुरोहित को कन्नौजेश्वर के पास भेजकर शशिव्रता के साथ शीघ्र ही विवाह कर लेने के लिए उनके भाई कमधज वीरचंद पुंज कुमार शशिव्रता से विवाह करने के लिए आने वाला है। विशेष वर्णनात्मकता प्रमुख है। चंद ज्योत्सना पद में रूपक अलंकार है। हंसदूत का नैपुण्य उसका बुद्धि कौशल श्रुत्य अनुराग जगाने का ढंग और उसके बाद वास्तविक या घटित होने वाले तथ्य का उद्घाटन आदि सब कुछ विशेष द्रष्टव्य है। वस्तु के विधान और विकास की सूक्ष्मता भी उल्लेख्य है। समय और स्थिति को निहार कर महत्वपूर्ण वस्तु का प्रतिपादन दूत का वैशिष्ट्य स्वीकारा जाता है, जो कि यहाँ पूर्ण रूपेण वर्तमान है।